जॉन एफ कैनेडी और फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी की जीवनी लिखने वाले नाइजल हैमिल्टन कहते हैं कि बायोग्राफी इज सिंपली द ऑर्फन ऑफ एकेडेमिया। अगर कोई नेता वो सब करता है जो ऐतिहासिक ताकतें उसके लिए अपरिहार्य कर देती हैं, तो फिर वो व्यक्ति उतना माने नहीं रखता जितना कि समय का वो क्षण। अगर आप इस संदर्भ में नरसिम्हा राव को देखें तो उनकी राजनीतिक पारी का एक तरह से अंत हो चुका था। रॉजर्स रिमूवल कंपनी का ट्रक उनकी किताबों के 45 कार्टन लेकर हैदराबाद रवाना हो चुका था। यह अलग बात है कि उनके एक नौकरशाह मित्र ने, जो शौकिया ज्योतिषी भी थे, उनसे कहा था कि इन किताबों को यहीं रहने दीजिए, मेरे हिसाब से तो आप वापस आ रहे हैं। विनय सीतापति अपनी किताब हाफ लॉयन में लिखते हैं कि नरसिम्हा राव इस हद तक रिटायरमेंट मोड में चले गए थे कि उन्होंने दिल्ली के मशहूर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया था, ताकि अगर भविष्य में वो कभी कुछ दिनों के लिए दिल्ली आए तो उन्हें रहने की दिक्कत ना हो। तभी अचानक जैसे सब कुछ पलट गया। 21 मई 1991 को श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या हो गई। इस घटना के कुछ घंटों के भीतर यानी तड़के 22 मई 1991 को बीबीसी ने नरसिम्हा राव से संपर्क किया जब वो नागपुर से दिल्ली जाने वाला विमान पकड़ने की कोशिश कर रहे थे।
आप श्री राजीव गांधी की मौत के बाद अपनी पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं?
बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं समझता हूं कि पार्टी इसको भी बर्दाश्त करेगी और अपनी ताकत को, अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ेगी।
नरसिम्हा राव जी, मैंने दिल्ली फोन किया, कुछ प्रेक्षकों से बात की, कुछ हलकों से ऐसा सुनने में आया कि कुछ लोग आपके नाम पर विचार कर रहे हैं कि आपको पार्टी का नेता नियुक्त किया जाए।
मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेरे विचार में तय करेगी। पार्टी की अपनी मशीनरी है। अब मैं थोड़ी देर में जा रहा हूँ, मैं अभी नागपुर से बोल रहा हूँ।
राजीव गांधी की हत्या के बाद जब विदेश से आए मेहमान शोक व्यक्त करने के बाद वापस चले गए, तो सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी के पूर्व प्रधान सचिव रहे परमेश्वर नारायण हक्सर को 10 जनपद बुलवाया। उन्होंने हक्सर से पूछा कि आपकी राय में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए कौन व्यक्ति सबसे अधिक उपयुक्त है। हक्सर की सलाह थी तत्कालीन उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। नटवर सिंह और अरुणा आसफ अली को जिम्मेदारी दी गई कि वो शंकर दयाल शर्मा का मन टटोलें। नटवर सिंह ने बीबीसी को बताया।
तो उन्होंने कहा कि अरुणा आसफ अली और नटवर सिंह को शंकर दयाल शर्मा के पास भेज दो, जो उपराष्ट्रपति हैं। अरुणा जी हमें चले गए शर्मा, और हमने वो उनका पैगाम दिया कि सोनिया जी चाहती है कि आप प्रेसिडेंट बन जाइए कांग्रेस के, फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाइए। बहरहाल उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत बड़ी बात की है सोनिया जी, मेरा धन्यवाद दीजिए, मगर प्राइम मिनिस्टर के लिए 18-20 घंटे काम करना पड़ता है, अब मेरी उम्र और स्वास्थ्य साथ नहीं देगा तो मैं माफी चाहता हूँ। तो हम दंग रह गए साहब। तो फिर गए साहब, फिर बुलाए हक्कर साहब को। हक्कर साहब ने कहा कि नरसिम्हा राव को बुला लो, इतने नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने थे।
नरसिम्हा राव भारतीय राजनीति के ऊबड़ खाबड़ धरातल से ठोकरे खाते हुए सर्वोच्च पद पर पहुंचे थे। इस पद को पाने के लिए उन्होंने किसी राजनीतिक पैराशूट का सहारा नहीं लिया था। राव का कांग्रेस और भारत के लिए सबसे बड़ा योगदान था डॉक्टर मनमोहन सिंह की खोज। विनय सीतापति बताते हैं।
जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए June 21, 1991, बहुत से चीज़ों में वो एक्सपर्ट थे। एडुकेशन हेल्थ में वो एक्सपर्ट थे, वो आंध्रा में एडुकेशन और हेल्थ मिनिस्टर बन चुके थे और यूनियन मिनिस्टर भी बन चुके थे दिल्ली में। फॉरेन अफेयर्स में वो एक्सपर्ट थे, सो इंटरनल सिक्योरिटी में वो एक्सपर्ट थे, इकोनॉमिक्स में वो एक्सपर्ट नहीं थे। उनको एक चेहरा चाहिए, एक मुखौटा चाहिए था जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन IMF और डोमेस्टिक ओपोनेंट्स को असुएज कर सके, उनको वो ज़रूरत थी। June 19, 1991 नरसिम्हा राव पास में विलिंगडन क्रेसेंट में थे। PC अलेक्जेंडर उनके सबसे बड़े एडवाइज़र हैं और नरसिम्हा राव PC अलेक्जेंडर से पूछते हैं, आई वॉन्ट एन इंटरनेशनली क्रेडिबल फेस एज फाइनेंस मिनिस्टर, दैट इज द कोट। अलेक्जेंडर ने उनको कहा कि आप IG पटेल से पूछिए, IG पटेल ने नहीं कहा। फिर PC अलेक्जेंडर ने मनमोहन सिंह का नाम बोला। तो उस रात June 20th इवनिंग वन डे बिफोर दी स्वेयरिंग इन सेरेमनी पीसी अलेक्जेंडर ने रात को मनमोहन सिंह को फोन किया. तब मनमोहन सिंह जी सो रहे थे क्योंकि वो फॉरेन से आए थे, और फिर उनको उठाया गया और उनको कहा कि आप फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे. नेक्स्ट मॉर्निंग जून 21st 12 बजे स्वेयरिंग इन सेरेमनी वॉज स्केड्यूल्ड. मेरे ख्याल से 8-9 बजे सुबह मनमोहन सिंह जी अपने घर से यूजीसी ऑफिस गए, वो यूजीसी चेयरमैन थे, और वहाँ पे एक फ़ोन कॉल आया. नरसिम्हा राव फ़ोन पे थे, उन्होंने कहा कि भाई आई वांट यू एज फाइनेंस मिनिस्टर, आप 12 बजे स्वेयरिंग इन है, आप एक घंटे पहले आइए क्योंकि मुझे वो स्पीच के बारे में बात करना है, तो आप एक घंटे पहले आइए. और फिर नरसिम्हा राव ने उनको कहा कि इफ़ वी सक्सीड वी विल बोथ गेट द क्रेडिट, If we fail, you will have to go.
लेकिन नरसिम्हा राव की सबसे बड़ी किरकिरी हुई जब केंद्र सरकार की सारी कोशिशों के बावजूद बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया. कांग्रेस के अंदर और बाहर भी कई लोगों ने इसके लिए नरसिम्हा राव को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन विनय सीतापति इस मामले में नरसिम्हा राव को क्लीन चिट देते हैं.
नवंबर 1992 में दो डेमोलिशन प्लान हुए थे. एक था बाबरी मस्जिद का, बीजेपी और संघ परिवार प्लान कर रहे थे, और दूसरा था नरसिम्हा राव का, और अर्जुन सिंह और उनके जो राइवल्स हैं कांग्रेस पार्टी में वो प्लान कर रहे थे. पूरे नवंबर में नरसिम्हा राव ने बहुत कोशिश की कि सबको डिसीशन मेकिंग में इंक्लूड करें. नवंबर 92 में 5 या 6 CCPA कैबिनेट मीटिंग्स थे. उस मीटिंग्स में एक भी कांग्रेस कैबिनेट मिनिस्टर ने नहीं कहा कि कल्याण सिंह को अभी निकालना चाहिए. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर कि only when law and order has broken down can you dismiss a government, not when law and order is about to break down. तो नरसिम्हा राव चाहते थे कि कोई और कहे कि please आप president's rule impose करें, तो वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, तो they chose to trust कल्याण सिंह. ज्योति बसु भी आपके उनके speeches देखिए नवंबर 92 में, वो कह रहे हैं कि usually we don't support president's rule, but if there is no other way to protect the mosque, we will agree to dismiss Kalyan Singh. वो ये नहीं कह रहे थे कि we don't trust Kalyan Singh, Kalyan Singh को अभी निकालो. ये constitutional problem है कि अगर secularism और democracy के बीच में लड़ाई हो तो कौन जीत सकता है.
ये जो थ्योरी है कि उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और वो पूजा में लग गए और उन्होंने कोई फोन कॉल्स नहीं किए,
ये थ्योरी देखिए कि नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे. एक सीनियर जर्नलिस्ट ने अपने बुक में लिखा कि नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे, तो ये दिस वॉज द ओरिजिन ऑफ दैट रूमर. तो फिर आप देखिए कि उनको कैसे पता था कि नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे. क्या वो वहां पे थे? नहीं. उन्होंने पुस्तक में लिखा कि हम वहां पे नहीं थे, बट एक सोशलिस्ट पॉलिटिशियन मधु लिमये ने मुझे कहा था कि नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे हियर से. फिर आप पूछिए कि मधु लिमये को कैसे पता है कि वो पूजा कर रहे थे, वो तो वहां पे नहीं थे. तो मधु लिमये ने खुद कहा कि मेरा एक सोर्स है पीएमओ के अंदर जिन्होंने मुझे कहा कि नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे. तो आप देखिए, ये एक रूमर है, आप मुझे पूछ रहे हैं ये रूमर, और जस्ट आप जाके देखिए कि ये रूमर के पीछे एविडेंस कहाँ है.
मैंने मशहूर पत्रकार सईद नकवी से पूछा कि क्या नरसिम्हा राव को इस मामले में ज्यादा से ज्यादा एरर ऑफ जजमेंट का दोषी माना जाए.
वो और चौहान दोनों, यानी दोनों खामोश बैठे रहे पूरे दिन. उनके होम मिनिस्टर थे, मस्जिद दिन भर गिर रही है, और रात को उनके अफसरान हमको दिखाई देते हैं यहाँ पार्टी में, तो सब तिलक लगाए हुए हैं, यानी गोया जैसे सेलिब्रेशन करके आ रहे. वो एक मुबहम मामला है. मैं एलिज नहीं करूँगा कुछ, लेकिन असर जो मुसलमानों पे हुआ उसके बाद ये कि 140 सीटें आ गई, कभी इतने कम कांग्रेस के नंबर नहीं हुए थे, डिफेक्ट करके चला गया, उसके बाद पार्टी ख़त्म हो गई, फिर वो रिवाइवल हो ही नहीं पाया.
6 दिसंबर 1992 को जिस दिन बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी, उस समय राव की मनोदशा क्या थी, उसके एक और चश्मदीद गवाह हैं उनके उस समय के निजी चिकित्सक डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी.
मैं पहले तो अचंभा रह गया था टेलीविजन पे देख के, तो मुझे भी धक्का लगा जो मैं देख रहा था. मेरे मन में ये आया कि प्राइम मिनिस्टर पे क्या बीतती होगी, स्ट्रेस बढ़ गया होगा उनका बहुत ज्यादा. तो एक डॉक्टर का फर्ज निभाने मैं चला गया वहाँ पे. वो घेरे हुए थे वहाँ पे अपने ऑफिस में अपने ऑफिसर्स के साथ. मुझे देख के एकदम अचंभा हो गया, फिर कहा कि क्यों आए इस वक्त. तो मैंने कहा कि सर आप थोड़ा इस बाजू वाले कमरे में आ जाइए. वहाँ पे आए, फिर थोड़ा नाराज थे. नहीं नहीं, इस वक्त थोड़ी है देखना है मुझे, इस वक्त मैं बिजी हूँ. मैंने कहा जी नहीं, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, खाली ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कर लूंगा. तो उस समय देखा कि उनका चेहरा लाल था, काफी एजिटेटेड थे, तो मैंने ब्लड प्रेशर लिया, काफी ज्यादा था. पल्स रेट भी देखा तो उसकी गति बहुत तेज थी. तो मैंने कहा सर थोड़ा दवाई मुझे और देनी पड़ेगी आपको. तो दवाई जो मैंने दिया वो ले लिए, چلے گئے اندر.
ڈاکٹر ریڈی کہتے ہیں کہ راؤ کی جانچ سے یہ آبھاس نہیں ہوا تھا کہ ان کی اس ٹریجڈی میں کوئی بھومکا تھی. شریر کبھی جھوٹ نہیں بولتا. سونیا کی پسند پر پردھان منتری بنے نرسمہا راؤ اور سونیا کے بیچ 1993 آتے آتے کافی دوری بڑھ چکی تھی.
91 سے 93 تک مہینے میں دو بار وہ ٹینجن پر جاتے تھے اور ہفتے میں دو بار وہ فون پہ سونیا گاندھی جی کے ساتھ بات کرتی تھی. اور کبھی کبھار جب نرسمہا راؤ ٹینجن پر فون کرتے تھے تو سونیا گاندھی سیکرٹری وڈ کیپ ہم ویٹنگ فار 4-5 منٹس وائل سونیا گاندھی کیم آن دا فون. تبھی انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ مائنڈ بٹ دا پرائم منسٹر آف انڈیا مائنڈ. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سونیا گاندھی نے ڈیلیبریٹلی یہ کیا, بٹ جب ایسے ہوا تو نرسمہا راؤ کو چوٹ تو لگی.
سیتاپتی اس کتاب میں رہسیہ اگھاٹن کرتے ہیں کہ 1996 میں جب اٹل بہاری واجپئی کی 13 دنوں کی سرکار بنی تھی تو انہوں نے نرسمہا راؤ کا سمرتھن لینے کی کوشش کی تھی. اس کی پشتی کرتے ہوئے نرسمہا راؤ کے جیوتشی اور راجنیتک سلاحکار رہے پنڈت این کے شرما کہتے ہیں,
دیکھیے اٹل بہاری واجپئی جی ہم کو جانتے تھے, انہوں نے بنگلور میں ہم کو آدمی بھیجا. انہوں نے تین چیزیں کہی تھی. پردھان منتری اٹل بہاری واجپئی جی کی طرف سے یہ پرستاؤ تھا کہ نرسمہا راؤ کے اوپر جو تین کیسز چل رہے ہیں سینٹ کٹس, جے ایم ایم, لکھو بھائی پاٹک, تینوں کیس نرست ہو جائیں گے. 1997 میں وہ بھارت کے راشٹرپتی بنا دیے جائیں گے. کیول اور کیول ہمیں اس پرستاؤ کے اوپر مدد کی بات ہے. جب یہ بات میں نے نرسمہا راؤ سے کہی, نرسمہا راؤ نے کہا جس پارٹی نے مجھے مکھیہ منتری بنایا, جنرل سیکرٹری بنایا, میں ودیش منتری رہا, گرہ منتری رہا, سکشا منتری رہا اور اب 5 سال تک پردھان منتری رہا, آج کانگریس ادھیکش ہوں, پارٹی کے ہتوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے میں اپنے فائدے کے لیے کام کیسے کروں. انہوں نے ٹھوکر ماری اس آفر کو.
حالانکہ واجپئی کے پردھان منتریتو کال میں بھارت نے پرمانو پریکشن کیا, لیکن ونے سیتاپتی کہتے ہیں کہ بھارتی پرمانو پریکشن کے اصلی پتا میں نرسمہا راؤ تھے.
2004 میں جب نرسمہا راؤ کا دیہانت ہوا, این ایموشنل اٹل بہاری واجپئی نے کہا کہ اٹ از ناٹ آئی, نرسمہا راؤ از دا ٹرو فادر آف دا نیوکلیئر پروگرام. تو سب نے سوچا کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ سب نے کہا کہ 1998 میں واجپئی واز دا ون ہو گیو پرمیشن فار ایکسپلوزنگ نیوکلیئر ٹیسٹ. تو وہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ نرسمہا راؤ جب پردھان منتری بنے تو نیوکلیئر پروگرام واز ان اٹس انفنسی, تو انہوں نے پیسے بھی دیے, ٹیکنیکل ایکسپرٹائز دی, اور پھر میں نے یہ بھی دکھایا کہ انہوں نے امریکی پریشر کو کیسے نکال دیا. جب وہ 1996 میں انہوں نے ریزائن کر دیا تو وہ عبد الکلام اور چدمبرم کے ساتھ وہ واجپئی کے ساتھ گئے اور انہوں نے کہا کہ بوم از ریڈی, سامگری تیار ہے, جب آپ چاہے اب کیجیے.
نرسمہا راؤ کے جیون کی ساندھبھیلا میں سوئم ان کی پارٹی نے ان سے کنارہ کر لیا. وہ بہت ایکاکی اور اپمانت ہو کر اس دنیا سے ودا ہوئے. نہ صرف ان کا انتم سنسکار دلی میں نہیں ہونے دیا گیا بلکہ ان کے پارتھیو شریر کو بھی کانگریس مکھیالے 24 اکبر روڈ کے اندر نہیں آنے دیا گیا. شاید کچھ سمے بعد ہی اتہاس ان کا صحیح مولیانکن کر پائے.